मैत्री की चर्चा पूज्य स्वामी जी महाराज ने कल शुरू की थी, आज भी वही चर्चा जारी है। महर्षि याज्ञवल्क्य एक ऐसे संत हुए हैं जो बहुत अमीर थे, जिनके पास प्रचुर धन संपत्ति थी। सामान्यतः संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति होती ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। साधक जनों, ये संताई के साथ नहीं चलती। जहाँ धन संपत्ति का बोलबाला हो जाता है, वहाँ संताई लोप हो जाती है। प्रायः देखने में यही आता है। अतएव संतों महात्माओं के पास धन संपत्ति का होना शोभा नहीं देता। लेकिन ये महर्षि याज्ञवल्क्य एक ऐसे संत महात्मा हैं जिनके पास प्रचुर संपत्ति है, धन है, लेकिन कभी अपना नहीं माना। ये कोई छोटी बात नहीं है। राजा जनक भी, उनको राजऋषि कहा जाता है, ये भी ऐसे न। राजा जनक ने सब कुछ होते हुए अपना कभी कुछ नहीं माना, न मेरा राज है, न मेरा पाठ, मेरा कुछ नहीं है। ये धन संपत्ति, नथिंग बिलोंग्स टू मी, मेरा कुछ नहीं है। राजा जनक भी ऐसे ही मानते और महर्षि याज्ञवल्क्य भी यही मानते हैं। बहुत देर इस संसार में रहते हुए हो गए, मन में एकांत की भारी उत्कंठा है। अतएव सोचा, दो पत्नियां हैं, कात्यायनी एवं मैत्री, इन दोनों को अपनी संपत्ति एक जैसी बांट के तो कहीं एकांत में चला जाता हूँ। वहां जाके एकांत में साधना करूंगा, मानो साधना के अतिरिक्त और कोई काम नहीं। होल टाइम साधक, संसार में रह के साधक चुनो, होल टाइम साधक बनना असंभव नहीं तो कठिन तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। एकांत में आदमी चला जाता है तो काफी सारी कठिनाइयां कम हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, जो संसार में स्वाभाविक है। वहां जाके काफी कुछ आसान हो जाता है। इसलिए हर संत महात्मा एकांतवास करता ही है, उससे उसे बहुत लाभ होता है। उससे तो जो लाभ होता है होता ही है, उसके जो संगी साथी साथ होते हैं, जो साथ भक्त होते हैं, उन्हें कहीं अधिक लाभ होता है, इसमें कोई शक नहीं। दो पत्नियां हैं याज्ञवल्क्य की, कात्यायनी बड़ी पत्नी है, घर के कामकाज में बहुत सुग्रह है, बहुत अच्छी तरह से घर का काम काज करती है, संभालती है, मानो कोई ज्यादा इच्छा नहीं। दोनों बुद्धिमान है, लेकिन ये कम बुद्धि की है, मैत्री अधिक बुद्धिमान है। वह अधिक बुद्धिमान है, इसका अर्थ नहीं है कि वर्ल्डली वाइज है, नहीं, मैत्री वर्ल्डली वाइज नहीं है, कात्यायनी वर्ल्डली वाइज है। तो ठीक है, दोनों में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। कोई जैसी साउथ में भाव होते हैं, ऐसा कुछ ईर्ष्या इत्यादि कुछ नहीं है, दोनों प्रेम पूर्वक रहती हैं, संत की छत्र छाया में है। ये कोई छोटी बात नहीं, एक ही घर में दो महिलाओं का रहना एक पति, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैत्री प्रायः पतिदेव से परमार्थ पर चर्चा करती रहती है, अध्यात्म पर चर्चा करती रहती है, घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं, शुरू से नहीं है, छोटी है, समझो प्यारी भी होगी, लेकिन कोई रुचि घर के कामकाज में नहीं है। भोगी जीवन भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, भोगी जीवन से पहले ही मैत्री उपरांत है। आज याज्ञवल्क्य जी ने प्रपोज किया है, मैं एकांत में जाना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, अमृतत्व की प्राप्ति करना चाहता हूँ। विशेष शब्द या केवल किसी का कोई फेवरेट है, मैं अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? किसी ने जवाब नहीं दिया। कौन? देयर इज नो कंट्राडिक्शन एट ऑल। तो या केवल किसी ने कहा, जितनी मेरी पूंजी है मैं आप दोनों में बांट देना चाहता हूं एक जैसी। कत्यायनी बहुत खुश है, मानो सब कुछ मिल गया उसे। उसे अभी परमार्थ का कोई बोध नहीं है, ज्ञान ध्यान किसी चीज का कोई बोध नहीं है। मैत्री को भी हिस्सा दिया गया है, लेकिन चुप है। क्यों चुप है? मन ही मन सोच रही है, इनके पास अवश्य धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ है जिसे पाने के लिए जा रहे हैं, वह क्या है? अभी अपने ही मन में प्रश्न है। अभी याज्ञवल्क जी से नहीं पूछा, महर्षि से कोई बात नहीं की, अपने ही मन में चर्चा है, अपना ही विचार चल रहे हैं। खूब इसका दिमाग चलता था इस चीज में, अपना ही दिमाग चल रहा है। ये सारी की सारी संपत्ति यहां छोड़ के जा रहा है, क्या प्राप्त करना चाहता है? लोग धन संपत्ति के लिए अपनी सारी की सारी आयु घोंप देते हैं, सारी की सारी जिंदगी घोंप देते हैं, लेकिन ये सब कुछ इसे प्राप्त है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है, क्या प्राप्त करना चाहता है? मानो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो ये प्राप्त करना चाहता है, वह क्या है? मैत्री के मन में ये प्रश्न उठा है, वह क्या है? मैं भी वही पाऊंगी। स्वामी जी महाराज ने शब्द कल प्रयोग किया, देना ही चाहते हो तो अपनी जैसी लग्न दो, मुझे आप जैसी लग्न लग जाए, जैसी लग्न आपको है, भक्ति की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की, अमृतत्व की प्राप्ति की, वैसी लग्न मुझे लगा दीजिएगा। कितनी सुंदर मांग है इस देवी की, महान देवी की। देखो दो प्रसंग मैत्री पर स्वामी जी महाराज ने क्यों चुना है, दो प्रसंग। छोटी हस्ती नहीं है मैत्री जिसकी इस प्रकार की मांग है। महर्षि से आप पूछ दिया, क्या सारे संसार की धन संपत्ति मिलने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। याज्ञवल्क एकदम टोकते हैं, अरे मैत्री, इस धन संपत्ति से ना परमात्मा मिलता है, ना संत मिलता है, ना ज्ञान मिलता है, ना भक्ति मिलती है, फिर क्या मिलता है? अभिमान। याज्ञवल्क इज सो क्लियर, सो लूसिड, इससे क्या मिलता है? कहा अभिमान मिलता है। इसको आदमी भोगता है तो भी अभिमान, दान देता है तो भी अभिमान, इसको अपने पास रखता है तो भी अभिमान। याज्ञवल्क्य के शब्द देखिएगा, कितने स्ट्रॉन्ग शब्द हैं धन संपत्ति के लिए। ये अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। हां, सुख सुविधाएं मिलती हैं, एक धनवान जैसा जीवन जीने को मिल जाता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। सुखी सुविधापूर्वक जीवन, सुखी जिसे हम सुखी समझते हैं, इससे अधिक नहीं। सुविधाएं मिल जाती हैं, धन सुविधा देता है, जो सामान्य व्यक्ति को, गरीब आदमी को नहीं मिलती, वह धनवान को मिल जाती हैं, बस इससे अधिक और कुछ नहीं है। पतनकारी चीज देके जाता है, मानो ये अर्थ अनर्थकारी है। यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं है, अर्थ अर्थात धन संपत्ति को अर्थ कहा जाता है, अर्थ ये अर्थ नहीं है, अर्थ ये अनर्थकारी है, ऐसा संत महात्मा घोषणा करते हैं। सो शेष महर्षि याज्ञवल्क, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैत्री कहती है, मुझे कह दीजिएगा जो आप पाना चाहते हो। उपदेश देते हैं, उपदेश को प्राप्त करके सीधे याज्ञवल्क जी महाराज अपनी साधना के लिए चले जाते हैं। मैत्री उसी वक्त घर छोड़ के थोड़ा मोटा सामान लेके तो महर्षि पराशर के आश्रम में चले जाती है, जो प्रसंग आज आपने पढ़ा है। देवियों, बहुत सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है आज का, मेहरबानी करके इसे बहुत लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सार है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए उसकी जानकारी तो बहुत आवश्यक है, उतना ही चर्चा करेंगे। मैत्री महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गई है, जाके साधना का शुभारंभ कर दिया है। एक छोटी सी कुटिया कमरा कोई होगा, कुटिया ही होती थी उस वक्त, कुटिया में एक रहने के लिए स्थान मिल गया। छोटा मोटा सामान जो साथ लेके गई हुई थी उसमें कपड़े भी थे, गहने भी थे, कोई पैसे भी होंगे। जाके बाहर कुछ खरीदना होता है, कुछ खाना होता है, कुछ पीना होता है, कपड़े बदलने होते हैं, धुलाने होते हैं, धोने होते हैं, इन सब के लिए पैसा चाहिए। बस ये पैसा जरूर मैत्री के पास होगा। मुनि एक ही बात पर टिके हुए इस सारे प्रसंग में उन्होंने एक ही शब्द कहा है, मैत्री त्याग कर सब कुछ मिलेगा। जिस शांति की खोज के लिए निकली हो अब, जिस परम शांति प्राप्ति परमानंद की प्राप्ति के लिए तुम निकली हो घर से, जिसके लिए साधनारत हो, उसकी प्राप्ति त्याग से होगी। त्याग कर जितना समझ में आया, जो कुछ साथ लाई हुई थी सब कुछ छोड़ दिया, जो कपड़े पहने हैं बस वही कपड़े रह गए, जो प्राश्र मुनि के आश्रम से खाने को मिलता उसी पर निर्वाह करती, लेकिन शांति अभी भी नहीं मिल रही। मुनि ने फिर कहा, मैत्री त्याग कर शांति मिलेगी, तेरा त्याग पूर्ण नहीं है। मन ही मन सोचती है, क्या रह गया है मेरे पास, कपड़े और तो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। अपनी अंग रक्षा के लिए मानो जिससे स्त्री की लाज बच जाए, उतने कपड़े रख के अपने शरीर के ऊपर बाकी सब कुछ छोड़ दिया, कोई कपड़ा अपने पास और नहीं रखा। अंग रक्षा के लिए स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया, इतना ही कपड़ा रखा है, मिनिमल पॉसिबल। गार्गी तो अवधूता थी, नंगी रहती थी, लेकिन मैत्री गृहिणी रह चुकी हुई है, अतएव अवधूता नहीं है, अवधूता बननी भी नहीं चाहती। अपनी अंग रक्षा के लिए दो कपड़े रखे हैं बस, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन शांति तो अभी भी नहीं मिल रही। आज अंतिम बार कहा है महर्षि, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अब क्या शेष रह गया है त्यागने को, जिसके लिए आप बल दे रहे हो। एक शरीर है, मेहरबानी करके मेरे लिए चिता तैयार कीजिएगा, मैं मरने को तैयार हूं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितनी उत्सुक है, कितनी ईमानदार है मैत्री, मुझे शरीर भी ये त्यागना पड़े मैं त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मुझे परम शांति परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। मुझे अपना जीवन सफल बनाना है, मुझे अपना जीवन सार्थक बनाना है। जिस काम के लिए मैं इस संसार में आई हुई हूं, वह काम मुझे पूरा करके जाना है, मैं उसे अधूरा नहीं रखना चाहती। संत महात्मा एवं परमात्मा ऐसी ईमानदारी पर फिदा हो जाते हैं, डुल जाते हैं। अब प्रश्न मुनि त्याग पर उपदेश देते हैं। हमारे जानने योग्य भक्तजनों, मात्र इतना ही, मैत्री वस्तु के त्याग को त्याग नहीं कहा जाता। धन संपत्ति का त्याग वस्तु के त्याग को त्याग नहीं कहा जाता। इससे जो मेरापन जुड़ा हुआ है ना, मेरी है, इसका त्याग त्याग, इसका त्याग त्याग है। मानो वस्तु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये चीज होगी। वस्तु छोड़नी बहुत आसान, लेकिन ये छोड़ना अति दुष्कर। ये मेरापन छूटता ही नहीं है, मेरापन का बोझ देवियों सज्जनों सारी जिंदगी भर आदमी ढोता है। वस्तु कभी नहीं कहती कि मैं तेरी हूं, ये मेरी मेरी कहके, मैं कहके, उस मेरेपन का बोझ सारी जिंदगी भर व्यक्ति ढोता रहता है और अंत में खाली हाथ जाता है, सब कुछ परमात्मा यहीं का यहीं छिड़वा जाता है। जो चीज तुझे जीवन काल में करनी चाहिए थी तू नहीं की, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। मैं तेरे से वह हर चीज छिड़वा रहा हूं, इस तेरे से चीज तो छुड़वा ही रहा हूं, साथ ही साथ जो तेरा मेरा मन इसके साथ जुड़ा हुआ है उसे भी छुड़वा रहा। कोई रिश्तेदार इस वक्त, कोई वस्तु, कोई मकान, जो कुछ भी तू अपना कहता था, किसी को बोल तेरा साथ देने वाला हो तो मानो परमात्मा ही दर्शा देता है जिनके लिए मेरा 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 करता था उनमें से इस वक्त तेरे साथ कोई नहीं है। मानो मेरा पन यही का यही परमात्मा छड़ के रख देता है। वस्तुएं तो रहती ही है यहां पर, लेकिन मेरा पन भी जो जुड़ा हुआ है वह भी परमात्मा यही छड़वा देता है। विकारों का त्याग त्याग, मैं और मेरे पन का त्याग त्याग, भौतिक कामनाओं का त्याग त्याग, परमेश्वर को अपने आप को चढ़ा देना त्याग, भक्ति में समर्पण त्याग। किसका समर्पण? बुद्धि का समर्पण, मन का समर्पण, इंद्रियों का समर्पण, इस शरीर का समर्पण। ये शरीर परमात्मा देव तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए, मेरे लिए। इस संसार में तेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं तो तेरी पूजा करता हूं, मैं तो तेरी सेवा करता हूं, मैं किसी और के लिए कुछ नहीं करता। आप तो उन्हें शब्द दे, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये तेरे शब्द होंगे। मैं तो एक ही को जानता हूं और वह है तू। ये सबसे बड़ा त्याग है। मैं तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। मैं तुझमें सबको देख के तो इन सबकी सेवा करता हूं, इन सबकी आरती उतारता हूं, इन सबकी पूजा करता हूं, ये मेरा कर्तव्य है। इससे बड़ा समर्पण देवियों, इससे बड़ा त्याग और कोई नहीं हो सकता सज्जनों। यही त्याग का सच्चा स्वरूप है। नथिंग बिलोंग्स टू मी। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरा है। तो देवी सज्जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।